At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Hey there, you're listening to The Quint.
नाम था गांधी मगर उसके हजारों नाम हैं, एक मैखाना है जिसमें हर तरह के जाम हैं। साहिर होशियारपुरी की नज्म गांधी का यह आखिरी शेर उस इंसान के बारे में दो मिसरों में सब बता देता है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, और आज दिल चाह रहा है कि शो का नाम एक दिन के लिए बदलकर गांधी नामा रख दें। मोहनदास करमचंद गांधी, कोई कहता है महात्मा, किसी के लिए बापू, ये वो मसीहा हैं जो दुनिया भर में रहमदिली, अमन सुकून, अहिंसा के उसूलों की नुमाइंदगी करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक भी इन्हीं उसूलों का दामन पकड़कर दुनिया से रुखसत हुए। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी के बारे में उर्दू शायरों ने किस तरह बयान किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज उर्दू नामा पर शुरू करते हैं गांधी नामा। दो अक्टूबर 1969 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत के पोरबंदर में हुआ, एक बनिया परिवार में हुआ। इनके पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी उस समय पोरबंदर के दीवान थे। दीवान का होदा उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर जैसा था। गांधी जी की माँ पुतलीबाई एक निहायत ही मजहबी औरत थी, अपने पति की तीसरी बीवी थी, और मोहनदास खुद अपने माँ बाप की चौथी औलाद थे। खुद मोहनदास करमचंद गांधी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई अपने से एक साल बड़ी लड़की के साथ, जिसका नाम कस्तूरबा। अच्छा, जिस साल इनकी शादी हुई थी उस साल, मतलब स्कूल का वो साल इन्हें ड्रॉप करना पड़ा, उसमें वो फेल हो गए थे। 18 साल के जब हुए तो फाइनली अहमदाबाद के एक स्कूल से हाई स्कूल पूरा किया, और एक साल के बाद अपने परिवार वालों को खूब मनाया, उन्हें राजी किया, और वो लंदन जाके लॉ की पढ़ाई करने लगे। अच्छा, गांधी जी के बारे में सब तो हमको पता है, स्कूल में खूब हमने पढ़ाई की है इसके बारे में, लेकिन आज इस एपिसोड में हम गांधी जी के बारे में जो उर्दू शायरों का तसव्वुर रहा है उस पे फोकस करेंगे, और उस तसव्वुर की जब हम बात करेंगे तो सिविल राइट्स की मशाल जो गांधी जी ने जलाई है उसके जिक्र के बिना नहीं कर सकती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जाके उन्होंने नौकरी की थी। हुआ ये था, एक छोटा सा ये भी आपको एक रीकैप दे देती हूँ गांधी जी की लाइफ का। लंदन से जब लॉ पढ़ के वो बॉम्बे आए तो उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि जब वो आए तब पता लगा कि उनके पीछे उनकी माँ का देहांत हो गया। अब वो दिमाग से काफी डिस्टर्ब हो गए थे, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर किसी ने इनसे कहा कि साउथ अफ्रीका में एक शिपिंग कंपनी है, वहां पे लॉयर की जरूरत है, और फिर इस तरह से गांधी जी साउथ अफ्रीका रवाना हो गए सिविल राइट्स के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। वहां से साउथ अफ्रीका में बैठकर गांधी जी ने काम करना शुरू कर दिया। बस फिर इंडिया आकर जिस तरह स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में उन्होंने पूरी मुल्क की नुमाइंदगी की, सबको अहिंसा का रास्ता दिखाया, वो किसी अमन के पैगंबर जैसे ही था। गांधी कौन थे, क्या हैसियत रखते थे और अब भी रखते हैं, ये कुछ नज़में ऐसी हैं जो जब आप सुनेंगे तभी इन सवालों के जवाब खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएंगे। इन नज़मों में जिस तरह उन्हें याद किया गया है, जिस तरह उनके गुजरने का मातम मनाया गया है, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब कोई गुजर जाता है और उसके जाने के बाद जो गम होता है ना, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो इंसान क्या हैसियत रखता था। इन नज़मों को पढ़ के बेसाख्ता आंखें ढूंढती हैं उस बापू को, धोती में अपनी लाठी के साथ चलते हुए, भारत के सीने में एक नूर की तरह जो हमेशा चमकते रहेंगे। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, भारत के उर्दू जबान में लिखने वाले नेशनल पोएट, गांधी जी के मुरीद थे। उनकी नज्म वतन का राग, इसमें गांधी जी के बारे में एक शेर है, वो आपको पढ़ के सुना रही हूं। लिखते हैं चकबस्त, हमारे वास्ते जंजीर व तौक गहना है, जंजीर उतौक यानी चेन और आयन कॉलर, हमारे वास्ते जंजीर उतौक गहना है, वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है, समझ लिया कि हमें रंज दर्द सहना है, मगर जबां से कहेंगे वही जो कहना है। चकबस्त की एक काफी लंबी नज्म है वतन का राग। इसे अगर गौर से समझ के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी बातें और उसूल जिनकी शक्ल में अहिंसा का सबक देते देते गांधी महात्मा बन गए, वो तमाम लेसन्स आपको इस नज्म में मिल जाएंगे। कहने को तो नज्म काफी लंबी है लेकिन बड़ी आसान जबान में है। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद 1947 से पहले वाले इंडिया में चली गई हूं, जब वतन की आजादी के लिए जो राग गाया जा रहा था उसे कोई एक कम्युनिटी नहीं गा रही थी, उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम दूसरे मजहब और फिरकों की कौमें सब मिलके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने होम रूल के हक में गा रही थी वतन का राग, जो था तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले, बहिश्त यानी जन्नत स्वर्ग। ये नज्म पूरी पढ़ देती हूँ, चकबस्त की नज्म वतन का राग। जमीन हिंद की रुतबा में अर्शे आला है, ये होम रूल की उम्मीद का उजाला है, मिसेस बेजेंट ने इस आरजू को पाला है, फकीर कौम के हैं और ये राग माला है, तलब फजूल है कांटों की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। वतन परस्त शहीदों की खाक लाएंगे, हम अपनी आंख का सुरमा उसे बनाएंगे, गरीब माँ के लिए दर्द दुख उठाएंगे, यही पयाम वफा कौम को सुनाएंगे, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। हमारे वास्ते जंजीर और तौक गहना है, वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है, समझ लिया कि हमें रंज और दर्द सहना है, मगर जबां से कहेंगे वही जो कहना है, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। पहनाने वाले अगर बेड़ियां पहनाएंगे, खुशी से कैद के गोशे को हम बसाएंगे, जो संतरी दरे जिंदा के भी सो जाएंगे, ये राग गा के उन्हें नींद से जगाएंगे, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। जबां को बंद किया है ये गाफिलों को है नाज, जरा रगों में लहू का भी देख ले अंदाज, रहेगा जान के हम राह दिल का सोज गुदास, चिता से आएगी मरने के बाद ये आवाज, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। यही दुआ है वतन के शिकस्ता हालों की, यही उमंग जवानी के नौनिहालों की, जो रहनुमा है मोहब्बत पे मिटने वालों की, हमें कसम है उसी के सफेद बालों की, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। यही पयाम है कोयल का बाग के अंदर, इसी हवा में है गंगा का जोर आठ पहर, हिलाले ईद ने दी है यही दिलों को खबर, पुकारता है हिमालय से अब्र उठ उठ कर, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। बसे हुए हैं मोहब्बत से जिनकी कौम के घर, वतन का पास है उनको सुहाग से बढ़कर, जो शीर खार है हिंदुस्तान के लख्त जिगर, ये माँ के दूध से लिखा है उनके सीने पर, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। जब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटेन जर्मनी के आमने सामने था, तभी गांधी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम जारी की, क्विट इंडिया मूवमेंट। कुल मिलाकर अगर आप ब्रिटिश सोर्सेज जाकर पढ़ेंगे, यानी कि उनके साइड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो साफ दिखेगा कि गांधी की वजह से क्राउन के नाक में दम हुआ हुआ था। आपको इस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की स्पीच का एक हिस्सा सुनाती हूं, जिसमें चर्चिल ने गांधी से अपने इख्तलाफ का इजहार खुले अल्फाज में किया है। ये स्पीच 1931 में लंदन के अल्बर्ट हॉल में दी थी। अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में ही पढ़ देती हूं। स्पीच के इस हिस्से में उन्होंने कहा था, आई एम अगेंस्ट दिस सरेंडर टू गांधी, आई एम अगेंस्ट दीज कॉन्वर्जेशन एंड अग्रीमेंट्स बिटवीन लॉर्ड इरविन एंड मिस्टर गांधी, Gandhi stands for the expulsion of Britain from India. Gandhi stands for the permanent exclusion of British trade from India. पहली लाइन क्या थी? I am against this surrender to Gandhi. यानी भारत का मतलब चर्चिल के लिए गांधी था. इस कदर खिलाफ थे वो हिंदुस्तान को आजादी देने के. लेकिन हुआ ये कि 1945 में चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो नेगोशिएशंस थी, जो बातचीत थी, वो शुरू हो गई थी. ये बातचीत चर्चिल के साथ काफी मुश्किल बन गई थी. लेकिन अब चर्चिल के हारने के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो अब उतनी मुश्किल भी नहीं रही थी. लेकिन महात्मा गांधी का सपना, एक हिंदुस्तान का सपना, पूरा नहीं हो पाया. आजादी के लिए बातचीत जरूर हुई, नेगोशिएट जरूर किया, लेकिन उसके लिए अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ भी बातचीत की थी. आजादी मिली लेकिन एक हिस्सा कट के अलहदा होकर पाकिस्तान बन गया और एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान बन गया. भारत के आजाद होने के चंद महीनों बाद ही 30 जनवरी 1948 में 78 साल के बापू को गोली मार दी गई. वो बापू जो उस वक्त तक कमजोर हो चुके थे, अपनी दो भतीजियों के सहारे वो चला करते थे, उन्हें वो अपनी वॉकिंग स्टिक्स कहा करते थे. नई दिल्ली के बिरला हाउस से जब बापू अपनी दो भतीजियों के साथ एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तभी कातिल जिसका नाम था नथुराम गोडसे, वो बापू के सामने आ गया भीड़ में से निकलता हुआ और वहीं अपने पास से पिस्टल निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर 3 उन पर वार किया. इस तरह अहिंसा के पैगंबर गांधी को आखिरकार गोडसे की हिंसा का निशाना बनना पड़ा. गांधी के कत्ल पर आनंद नारायण मुल्ला की नज्म उस सदमे का एहसास दिलाती है जो उस वक्त पूरे मुल्क पर पहाड़ बन के गिरा था. गांधी का कत्ल, ये नज्म आपके लिए पढ़ रही हूँ. मशरिक का दिया गुल होता है, मगरिब पे सियाही छाती है, हर दिल सन सा हो जाता है, हर सांस की लौ थर्राती है. उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर समत से एक चीख आती है, नौए इंसा कांधों पे लिए गांधी की अर्थी जाती है. आकाश के तारे बुझते हैं, धरती से धुआं सा उठता है, दुनिया को ये लगता है जैसे सर से कोई साया उठता है. कुछ देर को नब्जे आलम भी चलते चलते रुक जाती है, हर मुल्क का परचम गिरता है, हर कौम को हिचकी आती है. तहजीब जहां थर्राती है, तारीख बशर शर्माती है, मौत अपने कटे पर खुद जैसे दिल ही दिल में पछताती है. इंसान वो उठा जिसका सानी, सदियों में भी दुनिया जन ना सकी, मूरत वो मिटी नक्काश से भी जो बन के दोबारा बन ना सकी. देखा नहीं जाता आंखों से ये मंजर इबरत ना के वतन, फूलों के लहू के प्यासे हैं अपने ही खसो खाशा के वतन. हाथों से बुझाया खुद अपने वो शोला रूह पा के वतन, दाग उससे सियाह तर कोई नहीं दामन पे तेरे ऐ खाके वतन. पैगामे अजल लाई अपने उस सबसे बड़े मोहसिन के लिए, ऐ वाए तुलू ए आजादी आजाद हुए उस दिन के लिए, जब नाखून हिकमत ही टूटे दुश्वार को आसा कौन करे, जब खुश्क हुआ अबरे बारा ही शाखों को गुलफशा कौन करे, जब शोलाए मीना सर्द हो खुद जामू को फरोजा कौन करे, जब सूरज ही गुल हो जाए तारों में चरागा कौन करे. नाशाद वतन अफसोस तेरी किस्मत का सितारा टूट गया, उंगली को पकड़ कर चलते थे जिसकी वही रहबर छूट गया. उस हुस्न से कुछ हस्ती में तेरी अजदाद हुए थे आके बहम, एक ख्वाब हकीकत का संगम मिट्टी पे कदम नजरों में इरम, एक जिस्म नहीं फोजार मगर एक अज़्म जवान व मुस्तहकम, चश्मे बीना मासूम का दिल खुर्शीद नफस ज़ौक़े शबनम. वो इज्ज़ गुरूरे सुल्तान भी जिसके आगे झुक जाता था, वो मोम के जिससे टकरा कर लोहे को पसीना आता था. सीने में जो दे कांटों को भिजा उस गुल की लताफत क्या कहिए, जो जहर पिए अमृत करके उस लब की हलावत क्या कहिए, जिस सांस में दुनिया जा पाए उस सांस की निखत क्या कहिए, जिस मौत पे हस्ती नाज करे उस मौत की अजमत क्या कहिए. ये मौत न थी, कुदरत ने तेरे सर पर रखा एक ताजे हयात, थी जीस तेरी मेराजे वफा और मौत तेरी मेराजे हयात। यकसान नजदीक को दूर पे था बारान फैजे आम तेरा, हर दश्त चमन हर कोह दमन में गूंजा है पैगाम तेरा। उस लुत्फ करम के आई में मरकर भी न कुछ तरमीम हुई, इस मुल्क के कोने कोने में मिट्टी भी तेरी तकसीम हुई। तारीख में कौमों की उभरे कैसे कैसे मुमताज बशर, कुछ मुल्क के तख्त नशी कुछ तख्त फलक के ताज बसर। मखलूक खुदा की बन के सिपर मैदान में दिलावर एक तू ही, ईमा के पयंबर आए बहुत इंसान का पयंबर एक तू ही। बाजुए फरदा उड़ उड़ के थके तेरी रिफत तक जा ना सके, जहनों की तजल्ली काम आई खाके भी तेरे हाथ आ ना सके। अल्फाज मानी खत्म हुए उनवा भी तेरा अपना ना सके, नजरों के कवल जल जल के बुझे परछाई भी तेरी पा ना सके। हर इल्म यकीन से बाला तर तू है वो सिपहरे ताबिंदा, सूफी की जहां नीची है नजर शायर का तसव्वुर शर्मिंदा। पस्ती ये सियासत को तूने अपनी कामत से रिफत दी, ईमा की तंग ख्याली को इंसान के गम की वुसअत दी। हर सांस से दर से अमन दिया हर जबर पे दादे उल्फत दी, कातिल को भी गरलब हिल ना सके आंखों से दुआए रहमत दी। हिंसा को अहिंसा का अपनी पैगाम सुनाने आया था, नफरत की मारी दुनिया में एक प्रेम संदेशा लाया था। उस प्रेम संदेशे को तेरे सीने की अमानत बनना है, सीने से कुदूरत धोने को एक मौजे नदामत बनना है। उस मौज को बढ़ते बढ़ते फिर सैलाबे मोहब्बत बनना है, उस सैले रवा के धारे को इस मुल्क की किस्मत बनना है। जब तक ना बहेगा ये धारा शादाब ना होगा बाग तेरा, ऐ खाके वतन दामन से तेरे धुलने का नहीं ये दाग तेरा। जाते जाते भी तो हमको एक जीस्त का उनवा देके गया, बुझती हुई शमे महफिल को फिर शोला रक्सा देके गया, भटके हुए गामे इंसा को फिर ज्यादा इंसा देके गया, हर साहिल जुल्मत को अपना मीनारे दरख्शा देके गया। तू चुप है लेकिन सदियों तक गूंजेगा सदाए सास तेरी, दुनिया को अंधेरी रातों में ढारस देगी आवाज तेरी। गांधी की आवाज सिर्फ 2 अक्टूबर को नहीं, साल के हर दिन सुनने की कोशिश करें। जब अखबारों में खबरों में से खून टपकता है, जब नफरत भरे भाषणों से जहर टपकता है, जब मजहब के नाम पर सड़क पर कोर्टरूम बन जाता है और एक भीड़ खुद ही वकील और खुद ही जज बन जाती है, फैसला सुना देती है, तब सवाल दिल में आता है कि लोकतंत्र से भीड़ तंत्र कब बन गए? और भीड़ तंत्र का क्योंकि हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिए एक मासूम को सबके सामने सजा दी जाती है। जब जिस मुल्क में एक जानवर की जिंदगी के आगे इंसान की जिंदगी नहीं दिखती, जब नफरत एक न्यू नॉर्मल बनकर हमारे सामने नए नए चेहरे अख्तियार करके आती है, तब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के सिखाए सबक अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में गहरी सांस लेकर 2-3 बार हल्के आवाज में पढ़िएगा, शायद नफरत के उस अंधेरे पल में गांधी की आवाज सुनाई दी जाए। कोशिश करके देखिएगा।